नमस्कार भारत, आज है 10 अगस्त, दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिका ने कहा उत्तर कोरिया विनाश को बुलावा न दे। जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा ट्रंप की धमकी एक बकवास।
इबोने तोदाशी यूएनए इरुमुल थोयोंहायो जेजेक्योरीरुल थोजखे।
विस्थापितों से मिलने जा रही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी हिंदी वर्तनी की गड़बड़ी की वजह से परेशान हैं लाखों आदिवासी। और बंटवारे पर बीबीसी की श्रृंखला में आज सुनिए पाकिस्तान की सफिया की कहानी, जिन्होंने 70 साल बाद देखा फिरोजपुर का अपना घर।
आगे फिर सीरज है तो एक कमरा आता है, सेम से ही एक सीरज आता है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु हमलों को लेकर तीखी जबानी जंग जारी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया या तो परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयास रोके या अपनी व्यवस्था के अंत और लोगों के विनाश का सामना करे। वहीं उत्तर कोरिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रंप की चेतावनी कोरी बकवास है और उत्तर कोरिया प्रशांत महासागर स्थित अमरीकी क्षेत्र गुआम को बर्बाद करने की योजना को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले मंगलवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की चेतावनी दी थी। इसके जवाब में उत्तर कोरिया ने कहा है कि ट्रंप तर्कहीन नेता हैं और उनसे सिर्फ परम शक्ति के जरिए ही निपटा जा सकता है। उत्तर कोरिया ने यह भी कहा है कि उसकी सेना मध्य अगस्त तक गुआम पर 4 मिसाइल हमले करने की योजना बना रही है। इससे पहले अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा कि अमरीका को उत्तर कोरिया से तुरंत कोई खतरा नहीं है और अमरीकी लोग चैन की नींद सो सकते हैं। कीनिया के चुनाव आयोग ने विपक्ष के कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाने के आरोपों को खारिज किया है। मंगलवार को हुए चुनावों में मुख्य विपक्षी नेता रायला ओडिंगा ने राष्ट्रपति उहुरू के न्याटा के लिए बड़ी जीत दर्शा रहे शुरुआती नतीजों को खारिज कर दिया है। कीनिया में सैकड़ों विदेशी पर्यवेक्षक मौजूद हैं, जिनमें पूर्व अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी हैं। जॉन कैरी ने सभी पक्षों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कीनिया के लोगों के पास दुनिया को ये दिखाने का मौका है कि उनकी चुनाव प्रक्रिया सभी के मतदान का सम्मान करेगी। जॉन कैरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कीनिया के लोगों और कीनिया के प्रजातंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। ये भी महत्वपूर्ण है कि कीनिया के नेता भी आगे आएं और अगले कुछ दिनों में देश के लोगों को यह विश्वास दें कि चुनावी प्रक्रिया सावधानीपूर्वक सोच समझकर और सम्मानजनक तरीके से पूरी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन का कहना है कि मानव तस्करों ने यमन के तट पर करीब 50 सोमालियाई और इथियोपियाई लोगों को जानबूझकर डुबो दिया है। प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कहना है कि करीब 120 लोगों को खतरनाक स्थितियां होने के बावजूद जबरदस्ती समुद्र में ले जाया गया। राहत कर्मियों को 29 प्रवासियों के शव यमन के तट पर मिले हैं। जिंदा बचे प्रवासियों ने इन्हें तट पर ही दफना दिया था। 20 और प्रवासी लापता बताए जा रहे हैं। नाव में सवार अधिकतर लोग युवा थे और यमन के रास्ते मध्य पूर्व के देशों में जाना चाहते थे। अमरीकी अधिकारियों ने ड्रग तस्करों से संबंधों के आरोप में मैक्सिको की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान राफा मार्क्वेज पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीका के वित्त मंत्रालय ने 21 लोगों और 40 से अधिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें राफा मार्क्वेज भी शामिल हैं। उन पर कथित ड्रग तस्कर रॉल फ्लोरेज हर्नांडेज के साथ वित्तीय रिश्ते रखने के लिए आरोप लगाए गए हैं। मैक्सिको के चर्चित गायक जूलियो सेजर अल्वारेज का नाम भी इस सूची में है। अमेरिका के वित्त विभाग का कहना है कि इन लोगों और संगठनों की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। हवाना में अमेरिकी अधिकारियों के साथ घटित असाधारण घटनाओं के बाद अमेरिका ने क्यूबा के 2 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक बीते साल क्यूबा में मौजूद अमेरिकी अधिकारियों को सुनने की दिक्कतें आई थीं, जिनके बाद उन्हें अपने देश लौटना पड़ा था। एक अमेरिकी सूत्र ने समाचार एजेंसी एपी से कहा है कि इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जारी तनाव ने अब उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र के गुआम पर उत्तर कोरिया के हमले की धमकी के बाद अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया को परमाणु हथियारों से धमकाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया ऐसा नहीं करता तो उसे व्यवस्था में परिवर्तन और लोगों की तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका की इन धमकियों को उत्तर कोरिया ने कोरा बकवास बताया है और कहा है कि गुआम के समुद्री क्षेत्र में हमले की वो पूरी योजना तैयार कर रहा है। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
परमाणु युद्ध को लेकर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जारी जबानी जंग अब और उग्र हो गई है। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से प्रशांत महासागर स्थित अमेरिकी द्वीप गुआम को बर्बाद करने की धमकी दी है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की उत्तर कोरिया को बर्बाद करने की चेतावनी कोरी बकवास है। राष्ट्रपति ट्रंप की उत्तर कोरिया का विध्वंस करने की धमकी के जवाब में एक बयान जारी करते हुए उत्तर कोरिया की सेना ने कहा है कि ट्रंप जैसे तर्कहीन नेता से सिर्फ परम शक्ति से ही निपटा जा सकता है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक उत्तर कोरिया के बयान में यह भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया गुआम को आग की लपटों में घेरने की ऐतिहासिक योजना को मध्य अगस्त तक पूरा कर लेगा। उत्तर कोरिया के इस बेहद सख्त बयान से कुछ देर पहले ही अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा था कि उत्तर कोरिया ऐसी गतिविधियां ना करे जिससे वहां व्यवस्था परिवर्तन हो जाए और लोगों को विनाश का सामना करना पड़े। अमरीकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अमरीका और उसके सहयोगियों के सामने उत्तर कोरिया टिक नहीं पाएगा। इसी बीच अमरीकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमरीका में उत्तर कोरिया को लेकर एकमत है। विदेश विभाग के प्रवक्ता हीथर नोवट ने कहा, आप में से कुछ लोग इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन अमरीका उत्तर कोरिया को लेकर एकमत है। फिर चाहे व्हाइट हाउस हो, विदेश विभाग हो या रक्षा विभाग हो, हम सब एक ही आवाज में बोल रहे हैं। वास्तव में पूरी दुनिया एक आवाज में बोल रही है। वहीं गुआम पहुंचे अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन का कहना था कि अमरीका के सामने तुरंत कोई खतरा नहीं है और अमरीकियों को चैन की नींद सोना चाहिए। टिलरसन ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया को उसी भाषा में स्पष्ट संदेश दिया है जो उसके नेता को समझ में आती है। टिलरसन ने कहा, सार्वजनिक तौर पर हम उत्तर कोरिया को लेकर अपने बयानों में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम क्या होते हुए देखना चाहते हैं, और हमने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि हम उनके लिए खतरा नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जो खतरनाक धमकियां वो हमें दे रहे हैं हमें उनका जवाब भी देना है। इसी बीच उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाए गए ताजा प्रतिबंधों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए हैं। भीड़ को संबोधित करते हुए उत्तर कोरिया के एक वरिष्ठ नेता किम की नाम ने प्रतिबंधों को अपराध बताते हुए कहा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नाम का दुरुपयोग करते हुए एक बार फिर से प्रतिबंध लगाए हैं और ये मानवता के खिलाफ अस्वीकार्य अपराध है और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का कृत्य है जिसका उद्देश्य हमारी संप्रभुता को खत्म करना और जीवन और विकसित होने के हमारे अधिकार को छीनना है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जारी इस जबानी जंग से अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं भी बढ़ रही हैं। चीन, फ्रांस और जर्मनी ने दोनों देशों से शांत रहने की अपील की है और कहा है कि ऐसे बयानों से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा।
अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता तनाव, ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। मेधा पाटकर को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो धार जिले में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों से मिलने जा रही थी। सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को कल रात गिरफ्तार करके धार जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मेधा पाटकर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो विस्थापितों के बीच जाने के लिए अड़ी हुई थीं। पुलिस ने मेधा पाटकर से एक बॉन्ड भरने के लिए कहा कि वो धारा 144 का उल्लंघन नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने उसे भरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले मेधा पाटकर की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई। अस्पताल से निकलने के बाद मेधा पाटकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनका अनिश्चितकालीन उपवास आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भी किसी ने कुछ नहीं खाया और अपना उपवास जारी रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं।
इसे कानूनी भाषा में इलीगल डिटेंशन ही कहेंगे, क्योंकि जब मैं अरेस्टेड नहीं था मुझे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, विजिटिंग आवर्स में भी हमारे विजिटर्स को आने नहीं दिया, सिवाय चिन्मय मिश्रा के, सिवाय
धार जिले के चिखलदा गांव में उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठी मेधा पाटकर को पुलिस ने 7 अगस्त को जबरदस्ती उपवास स्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया था। चिखलदा गांव में सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावितों की मांग को लेकर मेधा पाटकर और 11 अन्य लोग अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे थे। उपवास के 12वें दिन पुलिस ने मेधा पाटकर सहित 6 लोगों को उपवास स्थल से जबरदस्ती हटा दिया। सरदार सरोवर बांध क्षेत्र के डूब में 192 गांव के 40,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इनकी मांग को लेकर ही मेधा पाटकर अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठी थीं। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दिलनवाज, भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री समेत लगभग सभी दलों के नेताओं ने संसद को संबोधित किया। आज अखबारों में क्या कुछ छपा है इस बारे में?
जी, लगभग सभी अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से लिया गया है। जनसत्ता लिखता है, गांधी के सपनों का भारत बनाएंगे लोकसभा में संकल्प पारित। तो पंजाब केसरी कहता है कि देश की संसद में बड़ा संकल्प। दैनिक जागरण लिखता है, आओ 5 वर्षों में बनाए नया भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद को संबोधित किया और एक नया संकल्प दिया, करेंगे और करके रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं किया, जिसका सोनिया गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि हम मानवीय स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस की भूमिका क्या थी, ये सवाल उन्होंने उठाया। ये आज सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। इसके अलावा जो खबर ध्यान खींच रही है वो है मुंबई से, जहां लाखों की तादाद में मराठा लोग सड़कों पर उतरे हैं। उनकी तस्वीरें आज के अखबारों में हैं, द इंडियन एक्सप्रेस में है, नई दुनिया में है, लगभग सभी अखबारों में तस्वीर है। और जो उसमें नज़र आ रहा है, बड़ा हुजूम, हाथ में केसरिया झंडे और उनकी जो है लंबी कतार।
एक साल में उनका 58वां मार्च था ये।
जी, और कुछ रिपोर्टें तो ये भी कह रही हैं कि इसमें कई लाख लोग, एक अखबार ने 9 लाख तक की संख्या लिखी है। इसके अलावा एक और खबर है, मानवीय खबर है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। भारत के बड़े उद्योगपति रहे विजयपत सिंघानिया रेमंड समूह के मालिक हैं। अखबार बता रहे हैं कि इस समय ये पाई पाई के लिए मोहताज हैं और इनके बेटे गौतम सिंघानिया ने उनसे जो है संपत्तियाँ और जो बाकी चीज़ें हैं छीन ली हैं। ये अखबारों का आरोप है, सभी अखबारों में पहले पन्ने पर यह खबर है। और एक और जो घटनाक्रम गुजरात का हुआ है, जिसमें अमित ये पटेल, अहमद पटेल ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है बहुत जोर तोड़ के बाद, तो अब अखबार इसके विश्लेषण छाप रहे हैं। आज का अखबार का एक शीर्षक है, भाजपा के चूकते ही पटेल ने तोड़ दिया चक्रव्यूह। और एक दूसरा शीर्षक है, शाह बहुत खफा हैं पटेल की जीत से।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पठारी इलाकों में बारिश के साथ नदियों में बहने और पानी में डूबने से मरने का सिलसिला जारी है। 1.5 महीने के दौरान कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है। कई घटनाओं में तो एक ही परिवार के 3-4 लोगों की मौत नदी में बहने से हो गई है। ऐसे शवों की तलाश में कई दिन लग जाते हैं। कई शव मिलते हैं तो कुछ का पता ही नहीं चलता। सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया है नीरज सिन्हा ने।
लगातार जाइले हमरे नदी घूरिला 12 बजे रायते, दिने 8 बजे, रायते 8 बजे अगुर का पूजा करिला।
गवई महिला दुर्गा देवी स्थानीय पंच परगना भाषा में बता रही हैं कि 9 दिनों से सुबह सांझ और रात वो नदी किनारे जाती हैं, लेकिन उनका 5 साल का छोटा नाती नहीं दिखता। यह कहते हुए डबडबाई आंखों से वो अपनी बेटी और बड़े नाती की ओर देखती है। झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर कंकालजारा गांव हम नदी पार करके ही पहुंचे थे। यहाँ नदी की तेज धार में इस महिला का नाती बह गया जिसका कोई पता नहीं चला है। स्थानीय अंचल की अधिकारी छवि बारला के मुताबिक पुलिस वालों ने बच्चे को तलाशा लेकिन हाथ खाली रहे। इस घटना ने दुका देवी की बेटी जानकी को हिला दिया है जो अपने बेटे की एक झलक पाने को बेचैन रहती है।
कहाँ पापे से निया बुझा बुझी ला कहाँ देखे बाबे जाए के कहाँ यहाँ कर बे से निया समझता रहा रे बुझाए लाइफ़न।
कोयल, संख, दामोदर, भैरवी, मयूराक्षी, खरकई जैसी झारखंड की बड़ी नदियों में डूबने बहने की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस साल छोटी और कम चौड़ाई वाली पठारी नदियां भी मौत का सबब बन रही हैं, जबकि यही नदियां बड़ी आबादी की जिंदगी से जुड़ी हैं। झारखंड की पहाड़ियों, चट्टानों, नदियों पर सालों से शोध करते रहे नीतीश प्रियदर्शी से हमने बातें की।
पढ़ाई हमने कम की है जिसके चलते क्या हो रहा है कि पानी तो उतना ही है लेकिन वेग बहुत ज्यादा हो गया जिसके चलते पानी ओवरफ्लो भी कर रहा है और नदियों और नदी में जो अगल बगल लोग रहते हैं चाहे पार करने की कोशिश करते हैं वो डूब के बह जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले को नदियों को हमने नेचुरल वे में हम लोग बहने देते थे, अब उसको इंक्रोच कर रहे हैं, नदियों को दबा रहे हैं, आबादी बढ़ रही है जिसके चलते यह जो है हश्र हो रहा है और जियोलॉजी भी इसका जो है झारखंड की जियोलॉजी चाहे पठारी जियोलॉजी इसमें एक मुख्य भूमिका निभा रही है।
नीतीश ये भी कहते हैं कि इस संकट से बचने के लिए सरकार को एक साथ कई मोर्चे पर काम करना होगा। उधर डाल्टनगंज में चैनपुर गांव के युवक देवाशीष राजन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पिछले महीने सीठियो नदी की तेज धार में गाड़ी समेत उनके माता पिता भाई बहन बह गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने भाई बहन की लाश तो खोज निकाली लेकिन अब तक माता पिता का पता नहीं चला है। राजन कहते हैं लाशें मिल जाती तो अंतिम संस्कार कर लेता।
सर्टिफिकेट नहीं मिल जाती है और माने के ऐसे कार्यक्रम भी कर लेते हैं तो इच्छा ठीक नहीं लगता है। मैं ये आशा मिल रहा है कि मेरी डेड बॉडी मिले इस चलते में हम लोग रुके कि मैं अपने पिता माँ माता पिता को मैं अपने हाथों से नाती संस्कार कर सकती ये आश्वासन से मैं रुका हूँ जब फैमिली को ये आश्वासन से मुझे रुके हुए हैं।
वैसे इस घटना विशेष के बाद सरकार ने हर मृतक के नाम 4-4 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है लेकिन नदियों में बहने के हर मामले में मुआवजे की गारंटी नहीं होती। गौरतलब है कि राज्य में दर्जनों पुल पुलिये बेहद कम ऊंचाई पर हैं, लिहाजा भारी बारिश से पानी इन पुलों के ऊपर बहने लगा है जिससे घटनाएं बढ़ी हैं। तब राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा कहते हैं
लेकिन हम लोगों ने कहा है कि कहां इस तरह का बने अचानक जो पानी वगैरह बाढ़ आ जाता है कई पुल वगैरह बनाना होगा, पुलिया वगैरह बनाना होगा उसमें कम से कम उसका करंट को कम से कम धार को धारा को कम से कम माप लिया जाए कि इसमें कितना पानी आता है कितना करंट रहता है उसी के आधार पर फिर जो भी विषय आता है उसको फिर डीपीआर वगैरह बना करके उसको हम लोगों ने कहा।
जाहिर है इस विपदा से संभलने के लिए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर कोशिश जरूरी है ताकि पठार पर्वत नदियों से लोगों की सालों पुरानी नजदीकियां बनी रहे। नीरज सिन्हा, बीबीसी, रांची।
छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों का दावा है कि अंग्रेजी और हिंदी की वर्तनी की गड़बड़ी के कारण उन्हें आदिवासी समाज से अलग कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि एक ही परिवार के सदस्यों की जाति की वर्तनी अलग अलग होने से उन्हें अलग अलग समुदाय का मान लिया गया। जाहिर है ऐसा होने के कारण इन लोगों को आरक्षण समेत दूसरे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया में अपने युवा साथियों के साथ आदिवासियों की बैगा बोली में प्रणय निवेदन के गीत गा रहे शिवराम बैगा की पीड़ा है कि उनके नाते रिश्ते और गांव के लोग तो मानते हैं कि वे आदिवासी हैं लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती। सरकारी दस्तावेज में उनके दादा के नाम के साथ बैगा के बजाय बैगा लिख दिया गया और उसके बाद हुई जनगणना में उन्हें बैगा आदिवासी समुदाय से बाहर कर दिया गया। पिछले 80 सालों से शिव और उनका परिवार आदिवासियों को मिलने वाली आरक्षण समेत तमाम सुविधाओं से वंचित है लेकिन शिव अकेले ऐसे नहीं हैं। जांजगीर चांपा जिले के सोठी गांव के रहने वाले श्रीराम गोण कहते हैं।
नाम श्री राम गोण, मैं सवरिया जाति का हूँ। हम लोग का मिसल में सीधा डायरेक्ट दिया है सवरिया, वो जो बा है ना वो आ बन गया है। सवरिया नाम से हाई नहीं है, लिखता में नाम कलेक्टर ऑफिस से, तो वहाँ सवरिया नहीं है, संवरिया है।
कई इलाकों में तो एक ही परिवार के दो लोगों में से एक को सरकार ने आदिवासी मान लिया और दूसरे को गैर आदिवासी। कमली सरायपाली गांव के कीर्तन लाल सिदार ऐसे ही लोगों में से हैं।
जब कमीशन वगैरह चलता है ना, कभी भी एग्जाम वगैरह होता है, तो उसमें भी हम लोग ना आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। हमारे कास्ट के बहुत सारे जाति के लोग हैं, उनमें से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत झने कॉलेज भी नहीं कर पा रहे हैं, और तो छोड़ भी देते हैं पढ़ाई। ऐसे में क्या पढ़ के क्या लाभ।
रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कास्ट का प्रमाण पत्र है।
मेरा भाई का है, अब उसका बन गया है, ये अशोक कुमार सिदार है, उसका है, उसके पास है,
उनके पास है,
है जाति है उनके पास। मिसल जमीन एक है तो मिसल एक ही तो रहेगा ना।
इलाके की सामाजिक कार्यकर्ता शिप्रा देवी इन गड़बड़ियों को विस्तार से समझाते हुए बताती हैं कि ब्रिटिश शासन काल में हुई गड़बड़ियां आज तक बरकरार हैं।
जो इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं और छत्तीसगढ़ में उन्हीं लोग बोलते हैं, वो तीनों का डिफरेंस हो रहा है। हम ब बोलते हैं वो भ लिखा जाता है, और वो ऑटोमेटिक मात्रा का गलती हो जा रहा है, जिसके कारण ये परेशानियां आ रही है। जैसे सबर सौरा सौरा, वो तीनों एक ही है, सबर सौरा सौरा, लेकिन हमको हम सावल पकड़ के घूमते थे, वो हमको सरकार ने हमको सबरिया सबरिया बोल के खुद सबरिया लिख दिया, और हमको बोले सबरिया हमारे जाति में है ही नहीं है।
वर्ण शब्द और भाषा की गड़बड़ियों के कारण आदिवासी होने की अपनी पहचान से वंचित समुदायों ने सरकारों तक कई कई बार अपनी गुहार लगाई, लेकिन ऐसी सारी मांग और आवाजें सरकारी फाइलों में उलझी हुई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय का कहना है कि आयोग की जानकारी में ये बातें आई हैं और आयोग इन गड़बड़ियों के सुधार के लिए काम करेगा।
क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये दूर हम नहीं कर पा रहे हैं आज तक, उसकी सबकी योजनाओं को स्टडी करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आयोग को जितना एक तरह से अधिकार दिया गया है, उसकी कार्य योजना में जो बातें हैं उसके तहत ये जो आज तक की शिकायतें हो रही उसको दूर करने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे।
वर्ण शब्द और भाषा की शुद्धता जरूरी है, इस बात को आदिवासी समाज से बाहर कर दिए गए लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उनकी तकलीफ को सरकार समझे तब कहीं बात आगे बढ़े। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
भारत और पाकिस्तान अपनी आज़ादी की 70वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी की खुशी के साथ साथ दोनों मुल्कों को बंटवारे का गम भी झेलना पड़ा था। बंटवारे के कारण लाखों लोग अपना घर बार छोड़ सरहद की दूसरी तरफ जाने को मजबूर हो गए थे। बंटवारे को 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार अपना वो घर देखने की हसरत लिए जी रहे हैं, जहाँ या तो वे खुद या उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग बंटवारे से पहले रहा करते थे। बीबीसी उर्दू के हमारे साथी रजा हमदानी की माँ बंटवारे से पहले भारतीय पंजाब के फिरोजपुर शहर में रहती थीं। रजा अपनी माँ को उनका घर दिखाने के लिए भारत जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिला। इसके बाद बीबीसी हिंदी की इश्लीन कौर रजा की माँ सफिया हमदानी का घर ढूंढने फिरोजपुर पहुंची। क्या इश्लीन को रजा की माँ का घर मिला? फिरोजपुर से उनकी रिपोर्ट सुनिए।
70 साल पहले का वो दर्दनाक समय जब बॉर्डर के दोनों तरफ बसे लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। इनमें से एक थी साफिया हमदानी, जिन्होंने इंडिया से पाकिस्तान तक का सफर एक ट्रक में तय किया। तब से साफिया के दिल में एक ख्वाहिश है कि वो अपने फिरोजपुर के घर को एक बार फिर से देख सके,
और उनकी ये तमन्ना पूरी करने के लिए मैंने फिरोजपुर का सफर तय किया। फिरोजपुर तो मैं आसानी से पहुंच गई, लेकिन घर ढूंढने के लिए फिरोजपुर में बसे पत्रकार मलकीत सिंह की मदद ली। बचपन से फिरोजपुर में रहने वाले मलकीत इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। सफिया ने मुझे उस गली का नक्शा बना कर दिया था जहां उनका घर था। जैसे ही मैंने वो नक्शा मलकीत को दिखाया, वो समझ गए कि जाना कहां है।
हाँ, ये गली में। अच्छा, तो ये कूचा कादर बख्श।
हाँ, ये कूचा कादर बख्श।
वो मुझे कूचा कादर बख्श गली में ले गए। गली की कई चीजें बदल चुकी थी, जैसे उसका नाम अब कूचा ठाकुर सिंह धमीजा हो चुका है। हमने गली में रहने वालों से पूछताछ की, और सफिया ने जैसा बताया था हमें वैसा ही लकड़ी का एक बड़ा दरवाजा दिखा। हमने वीडियो कॉल के जरिए सफिया को वो घर दिखाया, और सफिया ने एक पल भी जाया किए बगैर बता दिया कि ये वही घर है जहां उनका बचपन गुजरा था। बाहर से तो वो घर सफिया ने पहचान लिया, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि इस घर को अंदर से देखा जाए और सफिया को भी दिखाया जाए।
सत श्री अकाल आंटी। आंटी आप बता सकते हो कि हम जो जिनका ये घर अब है वो कैसे ढूंढ सकते हैं हम उन्हें?
वो कपूर हैं जिन्होंने लिया हुआ।
पड़ोसियों से बात करके ये पता लगा कि अब कपूर इलेक्ट्रिकल्स वाला कपूर परिवार इसके मालिक हैं। हम एक मिनट गवाए बिना उनकी दुकान पहुंचे। जैसे ही हमने कपूर परिवार को सफिया के बारे में बताया, उन्होंने गोदाम के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। चलिए ऐसी फिर। उस वक्त मैं सफिया को उनका घर दिखाने के लिए बेचैन हो रही थी। मन में एक घबराहट भरी खुशी के साथ हम कपूर परिवार के साथ उनके गोदाम पहुंचे। सफिया का घर, जो कि अब कपूर इलेक्ट्रिकल्स का गोदाम बन चुका था, उसके अंदर दाखिल होने के बाद हमने सफिया को दोबारा वीडियो कॉल किया, सफिया से सबका परिचय भी करवाया।
ये देखिए, ये एंटर किया हमने,
अंदर आया थे इधर, ये जो कुआं था वो बंद कर दिया,
कुआं इन्होंने भर दिया, ये जगह है।
सफिया की आवाज में खुशी की लहर थी, ऐसी जैसे वो अपना खोया हुआ घर देखने के लिए बेताब हो रही हो। 70 बरस बाद भी सफिया को अपने घर का कोना कोना याद था।
इसके साथ एक कमरा था, हाँ जी, आगे फिर सीधा जाए तो एक कमरा आता है, सेम से ही एक सीधा जाते।
कुएं के बाद बरामदा, दाहिने तरफ कमरे, सफिया जो जो कहती गई मैं वो सुनते हुए उन्हें घर की सैर कराती गई।
बहुत अच्छा लगा जी, पुरानी याद आ गई, अपने पेरेंट्स याद आए।
सफिया को उनका घर दिखाने के बाद मैंने उनसे काफी बातें की। उन्होंने मुझसे कहा कि आज 70 साल बाद उनके कलेजे को ठंडक मिली है। सफिया के चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और अलविदा कहा।
फिरोजपुर से इशलीन कौर की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। नेपाल की संसद ने कानून पारित कर उस प्राचीन हिंदू परंपरा पर रोक लगा दी है जिसके तहत माहवारी के दौरान महिलाओं को घर से बाहर रखा जाता है। नए कानून के तहत महिलाओं को माहवारी के दौरान घर से बाहर रहने के लिए मजबूर करने की परंपरा को मानने के लिए बाध्य करने वालों को 3 महीने की सजा या 3,000 नेपाली रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। देश के कई दूरस्थ इलाकों में माहवारी के दौरान महिलाओं को घर के बाहर बनी झोपड़ी या कोठरी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और दुनिया की 8वीं नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को 21 अगस्त से ग्लासगो में होने वाली BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए 4थी और 8वीं वरीयता दी गई है। दुनिया की 16वें नंबर के खिलाड़ी साइना नेहवाल को टूर्नामेंट में 12वीं वरीयता दी गई है। और टेनिस में खिलाड़ी विष्णुवर्धन चीन के जिनान में चल रहे ATP चैलेंजर इवेंट के सिंगल्स में अकेले भारतीय बचे थे, अब वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और क्रिकेट में बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल को 12 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के लिए रविंद्र जडेजा के बैन की वजह से भारतीय टीम में 15वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और आखिरी टेस्ट में कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा है कि उत्तर कोरिया या तो परमाणु हथियार विकसित करने के प्रयास रोके या अपनी व्यवस्था के अंत और लोगों के विनाश का सामना करे। कीनिया के चुनाव आयोग ने विपक्ष के कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाने के आरोपों को खारिज किया है। मंगलवार को हुए चुनावों में मुख्य विपक्षी नेता रायला ओडिंगा ने राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा के लिए बड़ी जीत दर्शा रहे शुरुआती नतीजों को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी संगठन का कहना है कि मानव तस्करों ने यमन के तट पर करीब 50 सोमालियाई और इथोपियाई लोगों को जानबूझकर डुबो दिया है। अमरीकी अधिकारियों ने ड्रग तस्करों से संबंधों के आरोप में मैक्सिको की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान राफा मार्क्वेज पर प्रतिबंध लगाए हैं। हवाना में अमरीकी अधिकारियों के साथ घटित असाधारण घटनाओं के बाद अमरीका ने क्यूबा के 2 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण पढ़ने के लिए जुड़े रहिए BBCHindi.com के साथ। नमस्कार।